नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। मैथ्यू बी क्रॉफर्ड की पुस्तक शॉप क्लास एस सोलक्राफ्ट, कार्य के मूल्य पर एक दार्शनिक और सामाजिक विवेचन है। लेखक राजनीतिक दर्शन में पीएचडी होने के साथ मोटरसाइकिल मैकेनिक भी रहे हैं, इसलिए वे कार्यालयी ज्ञान, कार्य और कुशल हस्तश्रम के बीच के अंतर को केवल सिद्धांत से नहीं, व्यावहारिक अनुभव से भी देखते हैं। पुस्तक का केंद्रीय प्रश्न यह है कि आधुनिक समाज ने सफेदपोश पेशों और उच्च शिक्षा को प्रतिष्ठा का मुख्य मार्ग क्यों मान लिया, जबकि मरम्मत, निर्माण और तकनीकी शिल्प में जटिल बुद्धि, निर्णय और जिम्मेदारी शामिल होती है। क्रॉफर्ड हाथ से काम करने को अतीत में लौटने का भावुक आग्रह नहीं बनाते। वे दिखाते हैं कि किसी वास्तविक वस्तु के साथ काम करना व्यक्ति को कारण और परिणाम, दक्षता, स्वतंत्र निर्णय तथा काम की ठोस गुणवत्ता से जोड़ता है। उपभोक्ता वस्तुओं की मरम्मत विरोधी बनावट, अमूर्त कार्यालयी मापदंड और शिक्षा की दिशा पर उनकी आलोचना केंद्रित है। पुस्तक का उद्देश्य श्रम की गरिमा को नए ढंग से समझना और सोचने तथा करने के कृत्रिम विभाजन पर प्रश्न उठाना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, हस्तश्रम को केवल शारीरिक नहीं बौद्धिक अभ्यास के रूप में देखना। क्रॉफर्ड का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपाद्य यह है कि कुशल हाथ का काम दिमाग के काम का निम्नतर रूप नहीं है। एक मैकेनिक, बढ़ई या इलेक्ट्रिशियन को किसी तय निर्देश का यंत्रवत पालन भर नहीं करना होता। उसे समस्या के लक्षण पहचानने, उपकरणों के संकेत समझने, संभावित कारणों में अंतर करने और उपलब्ध सामग्री तथा समय के भीतर उचित समाधान चुनने होते हैं। यह ज्ञान अक्सर किताबों में पूरी तरह नहीं समाता, क्योंकि वह अनुभव, ध्यान और परिस्थितिजन्य निर्णय से विकसित होता है। उदाहरण के लिए, मशीन की आवाज, कंपन या किसी पुर्जे की घिसावट प्रशिक्षित व्यक्ति के लिए सूचना बन सकती है। इसीलिए क्रॉफर्ड बुद्धि को केवल अमूर्त विश्लेषण, भाषा या प्रमाण पत्रों से नहीं मापते। वे बताते हैं कि भौतिक जगत व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। गलत निदान, असावधान माप या कमजोर जोड़ का परिणाम सामने आ जाता है। यह प्रतिरोध शिल्पकार को विनम्र, सतर्क और उत्तरदायी बनाता है। पुस्तक इस धारणा को चुनौती देती है कि हाथ से काम करना सोचने से अलग है। इसके विपरीत, अच्छा शिल्प विचार इंद्रिय बोध और क्रिया का समन्वय है। इस दृष्टि से तकनीकी दक्षता केवल रोजगार की क्षमता नहीं, वास्तविकता को ठीक से पढ़ने की मानवीय क्षमता भी है। दूसरा, कार्यालयी काम में वस्तुनिष्ठ मानदंडों की कमी और उपलब्धि का संकट। पुस्तक सफेदपोश काम को निरर्थक घोषित नहीं करती, लेकिन उसके मूल्यांकन की एक संरचनात्मक समस्या पहचानती है। कई कार्यालयों में व्यक्ति की उपलब्धि प्रत्यक्ष उत्पाद की गुणवत्ता से कम और बैठकों, प्रस्तुतियों, लक्ष्यों, रिपोर्टों या बदलते प्रबंधकीय मापदंडों से अधिक तय होती है। क्रॉफर्ड के अनुसार, ऐसी स्थिति में श्रेय और दोष का वितरण कभी कभी मनमाना महसूस हो सकता है। इसके उलट, शिल्प के अनेक कामों में गुणवत्ता का एक ठोस परीक्षण होता है। दरवाजा सही बैठता है या नहीं, इंजन चलता है या नहीं, सतह समतल है या नहीं, विद्युत व्यवस्था सुरक्षित है या नहीं, ये मानदंड पूर्णतः सरल नहीं होते, पर वे काम करने वाले को बाहरी वास्तविकता के प्रति जवाबदेह रखते हैं। इसी जवाबदेही से काम पूरा होने की संतुष्टि और आत्मसम्मान पैदा हो सकता है। क्रॉफर्ड यह भी इंगित करते हैं कि अत्यधिक अमूर्त कार्य विभाजन में कर्मचारी अपने श्रम के अंतिम परिणाम से कट सकता है। तब वह किसी सार्थक वस्तु या सेवा के बजाय प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता रह जाता है। पुस्तक का आग्रह यह नहीं कि हर व्यक्ति कार्यालय छोड़े, बल्कि यह कि काम की गरिमा पर विचार करते समय स्वायत्तता, स्पष्ट परिणाम और गुणवत्तापूर्ण निर्णय को केंद्रीय मानदंड माना जाए। तीसरा, मरम्मत विरोधी उत्पाद डिजाइन से पैदा होती उपभोक्ता निर्भरता। क्रॉफर्ड आधुनिक उपभोक्ता संस्कृति की आलोचना इस आधार पर करते हैं कि अनेक वस्तुएं उपयोगकर्ता को उनके भीतर की कार्यप्रणाली समझने या उन्हें ठीक करने से दूर रखती हैं। जटिल इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां, बंद आवरण, विशेष औजारों की जरूरत और ऐसे पुर्जे जिन्हें अलग से बदलना कठिन हो, साधारण व्यक्ति की मरम्मत क्षमता को सीमित कर सकते हैं। परिणाम यह होता है कि छोटी खराबी भी उत्पाद बदलने या विशेषज्ञ सेवा खरीदने का कारण बनती है। लेखक के लिए समस्या केवल आर्थिक नहीं है। जब लोग रोजमर्रा की वस्तुओं को समझने, खोलने और सुधारने की आदत खोते हैं, तब वे अपने निर्मित परिवेश के सामने अधिक निष्क्रिय हो सकते हैं। मरम्मत का अभ्यास व्यक्ति को यह अनुभव देता है कि विफलता हमेशा अंतिम नहीं होती और किसी जटिल समस्या को चरणों में समझा जा सकता है। यह अनुभव तकनीकी आत्मनिर्भरता का आधार है। साथ ही, पुस्तक यह नहीं मानती कि हर आधुनिक उपकरण हर व्यक्ति को स्वयं ठीक करना चाहिए। विशेषज्ञता की आवश्यकता बनी रहती है। उसका बिंदु यह है कि डिजाइन और उपभोग की ऐसी व्यवस्था पर सवाल होना चाहिए जो समझने योग्य वस्तुओं को अपारदर्शी और फेंक देने योग्य बना दे। मरम्मत की संस्कृति संसाधनों के प्रति जिम्मेदारी, धैर्य और वस्तुओं के दीर्घ उपयोग का भी समर्थन करती है। चौथा, शिल्प। स्वायत्तता और काम के नैतिक मानदंडों का संबंध क्रॉफर्ड शिल्प को केवल व्यक्तिगत संतोष का स्रोत नहीं बल्कि नैतिक अभ्यास के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। इस विचार पर अरस्तुवादी परंपरा और एलेसडेयर मैकिंटायर के अभ्यास तथा सद्गुण संबंधी विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। किसी शिल्प में उत्कृष्टता बाहरी पुरस्कारों जैसे वेतन, पद या प्रशंसा से पूरी तरह निर्धारित नहीं होती। काम की अपनी आंतरिक मांगें होती हैं, जैसे सटीकता, मजबूती, सुरक्षा, अनुपात और विश्वसनीयता। इन मांगों को गंभीरता से लेने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अच्छे निर्णय की आदत विकसित करता है। शिल्पकार की स्वायत्तता का अर्थ मनमानी नहीं है, उसे ग्राहक की जरूरत, सामग्री की सीमाएं, मशीन के नियम और सुरक्षा की शर्तें सभी का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए स्वायत्तता जिम्मेदार निर्णय लेने की क्षमता है। पुस्तक का यह पक्ष उस आधुनिक धारणा का प्रतिवाद करता है जिसमें सम्मान मुख्यतः औपचारिक शिक्षा या संगठनात्मक पद से मिलता है। क्रॉफर्ड के अनुसार एक कुशल तकनीशियन का निर्णय भी सामाजिक भरोसे पर टिका होता है क्योंकि दूसरे लोग उसकी मरम्मत, निर्माण या जांच पर निर्भर करते हैं। शिल्प की नैतिकता व्यक्ति को अपने काम के परिणाम का मालिक बनाती है। वह काम को केवल आय अर्जित करने की गतिविधि नहीं गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में देखने का आधार देती है। अंत में शिक्षा और करियर की प्रतिष्ठा व्यवस्था पर पुस्तक का प्रश्न शॉप क्लास एज सोलक्राफ्ट उस व्यापक सांस्कृतिक संदेश की जांच करती है जिसमें 4 वर्षीय उच्च शिक्षा और कार्यालयी पेशे को सफलता का लगभग अनिवार्य मार्ग माना जाता है। क्रॉफर्ड के लिए समस्या शिक्षा विरोध नहीं है, उनका अपना गहरा दार्शनिक प्रशिक्षण इस बात का प्रमाण है। प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार की क्षमता, बुद्धि और रुचि पहचानने देती है। जब स्कूलों में व्यावहारिक कलाओं और तकनीकी प्रशिक्षण को कमतर समझा जाता है तब अनेक युवाओं के लिए सार्थक विकल्प अदृश्य हो जाते हैं। साथ ही केवल प्रमाण पत्र आधारित प्रतिष्ठा ऐसी अपेक्षाएं पैदा कर सकती है जिनका उपलब्ध कामों की वास्तविक प्रकृति से मेल न हो। लेखक कुशल ट्रेड्स को किसी आसान विकल्प के रूप में पेश नहीं करते, इनमें लंबा अभ्यास, अनुशासन, ग्राहक के प्रति जवाबदेही और लगातार सीखना जरूरी है। लेकिन वे यह स्पष्ट करते हैं कि समाज को ऐसे कार्यों की जरूरत है और इनमें वास्तविक समस्या समाधान की गुंजाइश है। पुस्तक करियर सलाह के प्रचलित सूत्रों से अलग होकर पूछती है कि व्यक्ति किस प्रकार के कार्य में प्रत्यक्ष जिम्मेदारी निभा सकता है और अपनी दक्षता को परख सकता है। इस तरह यह शिक्षा को केवल रोजगार बाजार की तैयारी नहीं व्यक्ति और भौतिक दुनिया के संबंध की तैयारी भी मानती है। निष्कर्ष में यह पुस्तक उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो काम को केवल वेतन, पदनाम या पेशेवर प्रतिष्ठा के आधार पर नहीं समझना चाहते। कार्यालयों में काम करने वाले लोग इसमें अमूर्त लक्ष्यों, अस्थिर मूल्यांकन और प्रत्यक्ष परिणाम से दूरी के बारे में एक सशक्त भाषा पा सकते हैं। वहीं तकनीकी पेशों, मरम्मत, निर्माण या घरेलू कामों में रुचि रखने वाले पाठक शिल्प की बौद्धिक और नैतिक गंभीरता पर विचार कर सकते हैं। विद्यार्थियों, शिक्षकों और करियर सलाहकारों के लिए भी यह उपयोगी है क्योंकि यह उच्च शिक्षा और व्यावसायिक कौशल के बीच बनी प्रतिष्ठा दीवार की जांच करती है। इसका व्यावहारिक लाभ हर पाठक का पेशा बदलना नहीं है। अधिक यथार्थवादी लाभ यह है कि व्यक्ति किसी वस्तु को ठीक करना सीखने, काम के ठोस मानदंड पहचानने और अपने दैनिक परिवेश के प्रति कम निष्क्रिय होने का निर्णय ले सकता है। बौद्धिक रूप से पुस्तक श्रम, स्वायत्तता और सद्गुण के प्रश्नों को रोजमर्रा के उदाहरणों से जोड़ती है। इसी कारण यह सामान्य करियर मार्गदर्शक या उत्पादकता पुस्तक से अलग है। यह तुरंत सफलता के नुस्खे नहीं देती, न ही हस्तश्रम का सरल महिमा मंडन करती है। एक दार्शनिक और कार्यरत मैकेनिक के संयुक्त दृष्टिकोण से यह दिखाती है कि अच्छा काम व्यक्ति के चरित्र, ध्यान और दुनिया के साथ उसके संबंध को कैसे आकार देता है। दर्शन के कुछ हिस्से चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं पर यही गहराई पुस्तक को टिकाऊ बनाती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मैथ्यू बी क्रॉफर्ड, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।